جب ہمیں مرتضیٰ کے زخمی ہونے کی خبر دی گئی اور بتایا گیا کہ اس کو پیچھے نہیں لا سکے، ہم ایک ہفتے تک بے خبر اور سرگرداں رہے، کچھ نہیں جانتے تھے کہ وہ شہید ہوا یا اسیر۔ پھر اس خدا کے بندے نے ہمیں خبر دی کہ جب مرتضیٰ کو گردن پر گولی لگی تو وہ بھی وہاں موجود تھا۔ میں جب بھی مرتضیٰ کو خواب میں دیکھتا ہوں تو اگلے دن مسلسل اسی خدا کے بندے کے بارے میں سوچتا ہوں۔
خدا نے ان مردوں کو صبر دیا ہے کہ وہ ہماری بے صبری دیکھیں اور کچھ بھی نہ کریں۔ پتہ نہیں مرنے سے پہلے ہمیں ان کی طرح صبر نصیب ہوگا کہ نہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ صبر کا نمونہ ہیں، وہاں جائیں گے تو آپ کے لیے ڈبل اجر حساب ہوگا۔
ڈبل؟
میں اپنی پیاری سی گڑیا بیٹی پر قربان جاؤں۔ ماں کے جگر کے ٹکڑے، آخر تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ میں تم پر قربان جاؤں، ایک نوالا کھا لو بیٹی۔ سر میں تو درد نہیں ہو رہا میری بیٹی؟
نہیں،
میرے جگر کے ٹکڑے میں جمعے کے دن کا صدقہ دینا بھول گئی تھی، جیسے ہی یاد آیا میرا دل پریشان ہو گیا۔ تم اکیلی مسجد کے صحن میں آخر کیا کرنے گئی تھی میری بیٹی؟ بولو نا۔ واقعی خدا نے بہت رحم کیا۔
ہاں خدا نے بہت رحم کیا، خدا کا شکر ہے۔ میں نے بول دیا ہے کہ تمہارے لیے ٹکٹ لے لیں اور کل تم لوگ ٹرین سے کم لوٹ جاؤ۔
واپس چلے جائیں؟
ہاں، اور سامان کو اچھی طرح سے پیک کر لینا تاکہ کل صبح کو چھوٹ نہ جائے، کیونکہ صبح سویرے کا ٹکٹ بولا ہے۔
آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم خود ہی ٹکٹ لے لیں گے۔ لو کھاؤ بیٹی۔ رحیم صاحب، ہمیں آپ کے قریب رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں آپ سے محبت ہے، اسی لیے رہنا چاہتے ہیں۔
میں بھی تم لوگوں کو بہت چاہتا ہوں، لیکن خود تمہارے لیے اور اس بچے کی خاطر بہتر ہے کہ تم لوگ لوٹ جاؤ۔ کیا ابھی بھی ناراض ہو؟
دل ٹوٹ گیا ہے اور یہ سمجھ گئی کہ محبت کرنے کی بھی حد و حدود ہوتے ہیں۔
لیکن مجھے تم سے لامحدود محبت ہے۔
تو کاش آپ اس کو ثابت بھی کر پاتے۔ اور ہاں رحیم صاحب، آپ بے فکر رہیں، ہم آج خود ہی چلے جائیں گے۔ زہرا آؤ بیٹا، چلو۔
سلام۔
علیکم السلام۔
امی کیسی ہیں آپ؟
ٹھیک نہیں ہوں بیٹا۔
کیوں، کیا ہوا ہے؟
حمید کو خواب میں دیکھا۔
پھر کیا دیکھا امی؟
اچھا خواب نہیں تھا۔ میں نے خواب دیکھا کہ ہم صحرا کے بیچ ہم کھانا کھا رہے ہیں، اس کا دانت ٹوٹا اور ہاتھ میں گرا اور پھر مٹی میں گر گیا۔ وہ اس کے بعد مٹی میں اپنا دانت ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ دانت غائب ہو گیا۔
نہیں معلوم، کوئی صدقہ خیرات نکال کر رکھ دیں، انشاءاللہ سب خیر ہوگا۔
حمید بھاگا ہوا ہے بیٹا، کیسا خیر۔ مجید بیٹا۔
جی۔
جاؤ حمید کو ڈھونڈو، اس سے کہہ دو واپس نہیں آیا تو اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔
नहीं है अम्मी, नहीं है, ना मुझे खबर है ना किसी और को। ये लें, आपके लिए रोटी लाया हूँ।
मैंने सारी उम्र मेहनत की और अपने बच्चों को जायज़ रोटी दी, ये है मेरी मेहनत का सिला कि लोग मुझे गलियों में कनखियों से देखें।
मैं आप पर कुर्बान जाऊं मेरी अम्मी जान, हमीद को कहीं आंख मत कर दीजिएगा। हमीद एक बेवकूफी कर बैठा, सादगी में कर गुजरा, उसके लिए दुआ करें शायद इंसान बन जाए और लौट आए।
मुझे नहीं मालूम मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया है कि सारी उम्र लोगों की बददुआएं लेती रहूं।
तुम्हारे लिए टिकट लिया है, तुम्हें तेहरान जाना होगा।
मैं जाकर क्या करूं?
इस लिफाफे में एक एड्रेस और पूरे कागजात है, जनाब जमशेद रजाई के पास जाना होगा। दोनों मिलके इसकी मैनेजमेंट में एक कंपनी रजिस्टर करवाओ।
माफ कीजिएगा साहब, पूछ सकता हूं कि ये किस लिए?
इसलिए कि एक पराये आदमी के नाम पर एक कंपनी खुलवाना जरूरी है ताकि बाद में गुलशनाबाद की जमीनों को खरीद सकें। मुझमें अब इन मामलात का हौसला नहीं रहा, तुम्हें जल्दी करनी होगी। क्या है, हाजी महदवी के पास जाकर इस्तखारा करवाना चाहते हो?
नहीं जनाब, मैं इन हालात में अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता।
माँ को भी साथ ले जाओ, उनकी भी आबो हवा बदल जाएगी।
वो नहीं जा सकती साहब, वो सफर के बिल्कुल काबिल नहीं है।
मेरे भाई फिक्र ना करो, 2-3 दिन की ही तो बात है। मैं और आरश उनका ख्याल रखेंगे, उनको देखने जाएंगे, कोई चीज चाहिए हो तो फराहम करेंगे। हमारे पड़ोस में एक बूढ़ी रहती है, उनको भी साथ हम ले जाएंगे ताकि रातों को वहीं रहे। ठीक है? समझे?
जी जी ठीक है, बस मुझे जरा मस्जिद तक जाना होगा बरात अली से मिलने के लिए, उसके बाद टिकट ले लेता हूँ।
जाओ जाओ जल्दी से, जमशेद को फोन करके तुम्हारे लिए एक अच्छा सा होटल बुक करवा देता हूँ। जल्दी करो।
ठीक है। बरात अली, बरात अली, अरे सो रहे हो? ठीक हो? उफ कितने तप रहे हो, बहुत बुखार है, क्या हुआ है?
भाई मजीद
बोलो,
इस पर थोड़ा पानी लगा के मुझे दे दो।
इससे तुम ठीक होने वाले नहीं हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना होगा। इस गीले रुमाल से तुम इतना तेज बुखार उतारना चाहते हो? नहीं हो सकता, चलो उठो, तुम्हें डॉक्टर के पास चलना होगा।
चलो 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 उठो, हाँ उठो उठो,
आराम से, शाबाश।
अगर तालीम जारी रखना चाहते हो तो जरूर अपने वालिद को बताओ बेटा, मुस्तफ़ा साहब समझदार आदमी हैं।
लेकिन मैं डरता हूँ कि अगर पढ़ूंगा तो रोजाना का खर्च कम पड़ जाएगा।
हर इंसान की रोजी मुअय्यन है, तुम खुदा की राह में कदम उठाओ, खुदा खुद रोजी का इंतजाम कर देगा।
हेलो
हेलो, सलामुन अलैकुम हाजी साहब, मैं तकवी ज़ादा हूँ, हाजी महदवी साहब की बेगम।
अलैकुम सलाम हाजिया साहिबा। हाजिया साहिबा, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ कि पेश आने वाले वाकयात से आपको बहुत परेशानी हुई।
नहीं हाजी साहब, कोई बात नहीं है, माफ़ कीजिएगा जो आपको जहमत दी। हाजिया साहिबा ने आपका नंबर दिया था, कहा था कि कोई काम हो तो रब्ता करूँ।
ज़रा एक मिनट होल्ड रखिए।
जनाब महदवी साहब की बेगम है,
सलाम बेटी सुमैया।
अलैकुम सलाम हाजिया साहिबा।
तुम ठीक हो बेटा?
खुदा का शुक्र है।
जहरा बेटी कैसी?
जहरा भी ठीक है।
हाजिया साहिबा, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आपसे खुदा हाफिजी करने के लिए
फोन किया था। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा।
कहाँ जाना चाहती हो?
खुदा ने चाहा तो कुम वापस जा रहे हैं।
अचानक कैसे
जाने का फैसला किया?
हाजिया साहिबा, कुछ अधूरे काम है वहाँ पर जिनको निपटाना बहुत जरूरी है। आप जब भी कुम तशरीफ लाएं, हमारे घर को जरूर रौनक बख्शें।
तुमने तो कहा था हाजी रहीम के काम खत्म होने तक यहीं रहोगी।
बस किस्मत में वापस जाना ही लिखा था। मेरी तरफ से हाजी शहीदी साहब से भी खुदा हाफिजी करे।
खुदा तुम्हारा हामी और नासिर हो बेटा।
मैं दुआ करूंगी कि खुदा आपकी मुश्किलात
को जल्द अज जल्द हल कर दे। मायदा जान और मोहम्मद हुसैन भी इस मुसीबत से निकल जाए।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
आइए सवार हो जाइए, चलिए गाड़ी चलने वाली, आइए जल्दी सवार हो जाइए।
चलो बेटी। मेहरबानी करके इजाजत दीजिए।
क्या लिखा है डॉक्टर ने?
खुशकिस्मती से रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल है।
तो इसकी हालत इतनी खराब क्यों है?
नहीं मालूम, बड़ी अजीब सी बात है। माफ कीजिएगा, बुखार कितने दर्जे है?
बहुत ज्यादा है।
जानता हूँ। कितना है?
तकरीबन 4। मैं जाकर नर्स को बुलाकर लाती हूँ, इनकी ड्रिप बदलनी है।
माफ़ कीजिएगा, अगर लाकर आप मुझे दे दें तो मैं इनको लगा सकता हूँ।
आप डॉक्टर हैं या मौलाना?
नर्स साहिबा, ये डॉक्टर भी हैं और आलिम भी, अलबत्ता हकीम बनने वाले हैं।
जी जी, बहुत खूब। इजाज़त दें, हमारे कुलीग को आने दें, वो लगा देंगे।
इनके डॉक्टर ने क्या कहा मजीद साहब?
कहा कि मुकम्मल टेस्ट देना होगा।
मेरे ख्याल से इन्फेक्शन के स्पेशलिस्ट को भी देख लेना चाहिए।
इस शहर में 4-5 ही स्पेशलिस्ट हैं। लगता नहीं है इनमें कोई इन्फेक्शन का स्पेशलिस्ट होगा। डॉक्टर ने कहा चंद घंटे सब्र करें, देखते हैं बदन क्या रिएक्शन दिखाता है।
ठीक है, खुदा पर भरोसा करते हैं।
तुम तेज तेज क्या पढ़ रहे हो?
मैंने देखा मोहसिन साहब बरात अली की सलामती के लिए जिक्र पढ़ रहे हैं, सोचा कि मैं भी जिक्र पढ़ूं।
कैसा जिक्र?
यही हमदो सूरा।
हमदो सूरा का मतलब होता है फातिहा। क्या ये बंदा खुदा मर गया है जो तुम हमदो सूरा पढ़ रहे हो?
जनाब आप वही हमदो सूरा पढ़ें, सही पढ़ रहे हैं।
तो तुम क्या पढ़ रहे हो?
या मनिस महू दवा व जिक्र हु शिफा।
मैं वही हमदो सूरा पढ़ता हूँ।
खुदा जजाए खैर दे।
सलामुन अलैकुम हाजी साहब।
अलैकुम सलाम रहीमी साहब, कैसे हैं आप?
आपकी मेहरबानी है।
हाजी साहब, हमें देने के लिए कुछ वक्त होगा आपके पास?
सलामुन अलैकुम।
अलैकुम सलाम हाजी साहब, मुझसे कोई काम था क्या?
तशरीफ रखिए।
या अल्लाह।
रहीमी साहब, क्या ये तय नहीं पाया था कि जब तक आप यहाँ तबलीग में मशगूल होंगे आपकी बेगम और बेटी आपके साथ रहेंगी?
क्यों नहीं हाजी साहब, लेकिन आपने तो खुद देखा कि क्या हुआ।
तो आपने क्यों अपनी बेगम को वापस जाने दिया? क्यों आपने इस बात का मौका दिया कि एक छोटा सा जख्म एक बड़े घाव में तब्दील हो जाए?
नहीं नहीं हाजी साहब, खुदा का शुक्र है कोई खास बात नहीं हुई है।
अगर कोई बात नहीं हुई है तो आप ना होने दें, जाएं उनको वापस लेकर आएं।
जी अच्छा।
अगर वो कुम पहुंच गई तो मुमकिन है कि घर वाले भी इस मसले में दखील हो जाएं, इस सूरत में इस मसले को हल करना मुश्किल हो जाएगा।
जी हाजी साहब आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन वो खुदा की बंदी भी मुझसे नाराज है।
नाराज होना भी चाहिए? हर इंसान सबसे पहले अपनी फैमिली और अपने रिश्तेदारों के तई जिम्मेदार है। سماجی ذمہ داری دوسرے نمبر پر آتی ہے۔
جی
اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے جائیے انہیں لے آئیے۔
ٹھیک ہے حاجی صاحب، اب اجازت دیں۔ یا اللہ، السلام علیکم مجید صاحب، آپ کو ایک زحمت دینی تھی۔
حکم کیجیے حاجی صاحب۔
حقیقت میں بیگم اور بچی ٹرمینل گئے ہیں، بعید لگتا ہے کہ مجھے
اس وقت گاڑی ملے۔ اگر آپ کے لیے زحمت نہ ہو تو آپ ٹرمینل جا کر ان سے کہیں کہ میرے آنے تک وہ لوگ رک جائیں۔
ضرور، معاف کیجیے گا، کیا آپ واپس جا رہے ہیں؟
نہیں میں نہیں جا رہا ہوں۔
حاجی صاحب بچی کا سر ہاؤس کی دیوار سے لگا تھا، خدا نخواستہ کچھ ہوا تو نہیں؟
نہیں نہیں خدا کا شکر ہے سب کچھ ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا ہے۔ پر مجید صاحب تم کو فوراً نکلنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ نکل جائیں۔
ٹھیک ہے ٹھیک ہے حاجی صاحب،
بہت بہت شکریہ تمہارا۔
سلام حاجی صاحب۔
وعلیکم السلام، یہاں کیا کر رہے ہو مجید؟
حاجی صاحب دو گھنٹے پہلے ہی بس جا چکی ہے۔
دو گھنٹے؟
ٹرمینل کے سامنے ٹریفک پولیس جرمانہ کر رہا تھا، میں یہاں آ کر کھڑا ہو گیا۔
لگتا ہے جب وہ لوگ یہاں پہنچے تو بس چلنے ہی والی تھی۔
لگتا تو یہی ہے۔
معاف کیجیے گا، آپ مہدوی صاحب ہیں؟
جی۔
سلام حاجی صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟
وعلیکم السلام۔
حاجی صاحب میری بیگم جب سے آپ کا ٹی وی پر پروگرام دیکھ رہی ہے ان کی عادتوں پر بہت اچھا
خدا کا شکر ہے، یہ سب خدا کی مہربانی ہے۔
حاجی صاحب معاف کیجیے گا، میرے ساتھ ایک فوٹو کھینچوا لیں گے؟ مہربانی۔ حاجی صاحب آپ پیدل کیوں چل رہے ہیں؟ آپ کے پاس تو کوئی بڑی یا لگژری گاڑی ہونی چاہیے۔
ہمارے پاؤں کے نیچے یہ جوتا بھی بڑی مشکل سے آیا ہے، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ بس کرو مجید،
جناب آپ کا بہت
خدا آپ کو سلامت رکھے، بہت بہت شکریہ۔ کیا ہو سکتا ہے کہ بس کے ڈرائیور کا فون نمبر کہیں سے مل جائے تاکہ اس کو فون کر سکیں؟
حاجی صاحب فرض کریں اس کا نمبر بھی مل گیا، ہم نے فون بھی کر دیا اور اس نے گاڑی بھی روک دی، پھر بھی آپ کی فیملی کو سڑک کے کنارے تو نہیں اتار سکتا نا۔ آپ فکر نہ کریں میں پہنچا دوں گا، بس سیٹ بیلٹ باندھ لیں، ذرا تیز چلنا ہوگا۔
مجید صاحب، مجید کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم گاڑی تیز چلا رہے ہو؟ دھیان سے چلو نا۔
صاحب سپیڈ میٹر کو نہ دیکھیں، یہ ہر 20 کلومیٹر کو 30 کلومیٹر دکھاتا ہے۔
میرے بھائی سپیڈ میٹر خراب ہو سکتا ہے، میری آنکھیں تو خراب نہیں ہیں نا۔
حاجی صاحب راستے میں سستانے کے لیے ایک جگہ ہے جہاں ساری بسیں نماز کے لیے رکتی ہیں، اگر دیر کی تو قم تک ہر بس کو چیک کرنا پڑے گا کہ کس بس میں ہے۔
اچھا ہوا کہ نماز کی یاد
کیا ہوا حاجی صاحب؟
ایک آدمی کو بازار کی مسجد میں نماز پڑھانے بھیجنا ہوگا۔
جی بولیے۔
برات علی صاحب کہاں ہیں؟
نہیں نہیں ہے۔
تو پھر ان کا موبائل تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟
میں تربیتی مرکز آیا تھا، دیکھا ان کا موبائل میز پر رکھا بج رہا ہے۔
تمہیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں؟
نہیں مجھے نہیں معلوم۔
شکریہ، خدا حافظ، مہربانی، اللہ نگہبان۔
برات علی اسپتال میں ہے حاجی صاحب۔
اسپتال؟ اسپتال کس لیے؟
نہیں ڈرے نہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے، طبیعت تھوڑی خراب تھی، اسپتال چھوڑ آیا ہوں۔
لا الہ الا اللہ۔ مدرسے کے کسی اور طلبہ کا فون نمبر ہے تمہارے پاس؟
میرے پاس صرف فرید صاحب کا نمبر ہے۔
دے دو دے دو، مجھے دے دو بھائی، تم ڈرائیونگ پر توجہ دو، میں خود ڈھونڈ لوں گا، البتہ اگر تم کو اعتراض نہ ہو۔ کیا لکھا ہے؟ ڈاکٹر فرید۔
دے دے، میں خود ڈھونڈ لوں گا۔
میرے بھائی تم آگے توجہ دو۔
ہاں شیخ ڈاکٹر، معاف کیجیے گا،
میں خود رکھ دوں گا، نیچے رکھ دوں گا، تم مہربانی کر کے آگے دیکھو۔ ہیلو، سلام ڈاکٹر فرید۔
وعلیکم السلام حاجی صاحب، کوئی بات نہیں، جی فرمائیے۔ حاجی صاحب معاف کیجیے گا، میں اس وقت برات علی کے پاس ہوں، ان کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، میں اس وقت نہیں آ سکتا۔ आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन अच्छा ठीक है, मुझे दोस्तों से मशविरा करने दे, मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ। जी जी कोई बात नहीं। क्या तुम आज बाजार के मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ा सकते हो? तुम्हें तकरीर भी करनी होगी।
क्या हाजी रहीमी साहब ने?
उन्होंने फ़ोन करके कहा कि हम में से कोई चला जाए, वो नहीं आ पाएंगे।
मैं शर्मिंदा हूँ, हमारे इमाम सैयद जमाल साहब मौजूद हैं।
क्या हुआ है?
इनको हर काम में मुझ पर बर्तरी हासिल है।
भाई तुम बाजार के मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ाओगे और तुम्हें तकरीर भी करनी पड़ेगी।
तंग मत करो, मोहसिन को भेज दो।
मोहसिन को काम था, वो चला गया। तुम जाओ ना, कोई मुश्किल नहीं है।
सिर्फ नमाज पढ़ानी होती तो चला जाता, लेकिन तकरीर करना जरा।
लेकिन हाजी रहीमी साहब नमाज के बाद तकरीर जरूर करते हैं।
मैं नहीं कर सकता, माफ करना।
तकरीर करने से डरते हो?
ये कोई डरने की बात है क्या?
हाँ
नहीं,
असल में मेंबर पर पढ़ने के लिए मेरे पास कुछ तैयार नहीं है।
मैं बताता हूँ ना तुम्हें क्या पढ़ना है।
अहकाम भी बयान नहीं कर सकते?
नहीं।
तुम्हें क्या स्ट्रेस है?
हकीकत में थोड़ा स्ट्रेस तो है
मेरे भाई। मैंने मदरसे में तुम्हें इतनी मशक करवाई, मसाइब पढ़ना सिखाए, फिर भी तुम्हें स्ट्रेस है।
भाई स्ट्रेस है ना, कोई गुनाह तो नहीं किया?
तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी।
हाँ
सलाम हाजी साहब। हाजी साहब एक मसला था। नहीं नहीं नहीं, वो हल हो गया। जमाल साहब ने मस्जिद जाने की जिम्मेदारी कबूल कर ली है, वो जा रहे हैं। जी हाँ, वो हमारे ही जमाल साहब। एक बात है जो वो आपसे ही करना चाहते हैं, जरा फोन होल्ड कीजिएगा, मैं आपकी बात कराता हूँ। होल्ड रखिएगा फोन, मेरी तरफ से खुदा हाफिज़।
मैं क्या कहूँ,
बात करो,
कहने के लिए कोई अल्फाज तो है
नहीं। हाँ हाँ ये लो।
हेलो सलाम हाजी साहब।
तुम जरा
हाजिर खिदमत हूँ। नमाज तो पढ़ा लूंगा, लेकिन मेरे लिए तकरीर करना जरा मुश्किल होगा।
मेरे भाई सिर्फ 15 मिनट तकरीर करो, नमाज के चंद अहकामात बयान करो और फिर थोड़ा बहुत मुहर्रम के बारे में बात करो।
हाजी साहब मैं 5 मिनट भी तकरीर नहीं कर सकता, मैं सिर्फ नमाज पढ़ा सकता हूँ।
लेकिन जमाल साहब बगैर तकरीर के तो नहीं हो सकता।
मेहरबानी करके मुझे माफ कर दें हाजी साहब।
जमाल साहब आखिर कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना।
तुम मुझे बताओ कि मसला क्या है? मेरे भाई तुम इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे हो? इतनी तेज गाड़ी मत चलाओ भाई।
जी?
नहीं नहीं, मैं तुमसे नहीं कह रहा था जमाल, मुझे परेशानी
नहीं होती तो मैं तुम्हें ज़हमत नहीं देता।
हाजी साहब हकीकत यह है कि स्कूल के ज़माने में मैंने 15 शाबान की मुनासिबत से तकरीर की। सिर्फ चंद ही दफ़ा अटका, लेकिन सब मुझ पर हंसे, उसके बाद से ही ऐसा हो गया हूँ।
इसका मतलब यह है कि तुम सारी उम्र तकरीर नहीं करोगे?
हाजी साहब लोगों को देखकर मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं।
जमाल तुम्हारी शख्सियत ऐसी नहीं लगती कि एक छोटे से
मसले की वजह से तुम इतने कमजोर पड़ जाओ। एक आलिम होने के नाते तुम्हें वाज़ो नसीहत और खास तौर पर तकरीर पर तवज्जो देनी चाहिए। तुमने तो अपनी पूरी जिंदगी को तबलीग इस्लाम के लिए वक्फ किया है। बड़े अफसोस की बात है कि एक छोटे से मसले
की वजह से तुम इस फैज से महरूम हो जाओ। तुम्हें मेरी
नसीहत यह है कि तुम तकरीर करो और उस मदरसे के वाकये को भी तुम भूल जाओ। रब्बिश रहली सदरी पढ़ो और मेंबर पर चले जाओ। अगर गए तो ठीक है,
ना गए तो मुझे फोन कर देना। शुक्रिया, खुदा हाफिज।
ठीक है जनाब, खुदा हाफिज।
हाजी साहब एक सवाल पूछ सकता हूँ?
तुम पहले एक्सीलेटर से पैर हटाओ, पैर हटाओ, आप सवाल पूछो।
देखिए अगर मैं एक ऐसा काम करना चाहूँ जो मेरी नज़र में ठीक हो लेकिन मेरी माँ नाराज होती हो तो उसका हुक्म क्या है?
तुम जवानों को खूब तरीके आते हैं, सवाल को ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हो कि वही जवाब मिले जो खुद चाहते हो। मेरे भाई अगर यह काम ठीक है तो अंजाम दो इस तरीके से कि तुम्हारी माँ को भी उसका सबब मालूम हो जाए। अब बताओ क्या बात है?
कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं है।
कोई लड़की है जो तुम्हें पसंद है लेकिन डरते हो कि तुम्हारी माँ मुखालफत करेगी?
नहीं हाजी साहब ऐसी कोई बात नहीं है।
तो फिर बता क्यों नहीं रहे हो?
नहीं बता सकता।
जब बता नहीं सकते तो उसका जिक्र क्यों करते हो भाई?
छोड़े किसी और वक्त के लिए, बाद में बता दूंगा।
ठीक कहते हो, इस वक्त मुझे आयतल कुर्सी पढ़ने से ज्यादा अहम कोई काम नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सोने के बाद गरारा करके देखना गला कितना ठीक होता है। सुबह माल्टे का जूस ले लेना, एक नेचुरल जूस अदरक के साथ मिला के पी लेना। तेज होगा लेकिन नज़ले का बेहतरीन इलाज है, मिला झिझक पी लेना, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ यकीन करो मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, ये बहुत बेहतरीन इलाज है। एक बार इसे पी कर देखो।
ठीक
है। अलैकुम सलाम।
सलाम अलैकुम।
वाह वाह। अलैकुम अस्सलाम।
आपका खैर मकदम है।
वल्ला अर्ज करूं कि हाजी महदवी साहब ने फ़ोन किया था, कह रहे थे कि उनको एक काम पेश आया है, उनकी जगह मैं हाजिर हुआ हूं।
उन्होंने खुद मुझे क्यों नहीं फ़ोन किया?
नहीं मालूम।
जनाब खोजिस्ता फर साहब, हाँ मैंने भी उनको बहुत फ़ोन किया लेकिन नहीं मिला, उनका नेटवर्क नहीं मिल रहा था।
सलाम सलाम सलाम, माफ कीजिएगा।
सलाम
सलाम।
अलैकुम सलाम।
सलाम।
आज के रिकॉर्डिंग का प्रोग्राम कैंसिल करें, हाजी महदवी साहब नहीं आ रहे हैं, इनको भेजा है।
यानी हाजी महदवी साहब तकरीर के लिए नहीं आएंगे?
जी नहीं, मेरे सुपुर्द किया है।
ठीक है, माफ कीजिएगा।
चलिए हाजी साहब चलिए।
बिस्मिल्लाह।
या अल्लाह,
देखते हैं आज क्या होता है, कैसी तकरीर करते हैं।
आप आगे आइए।
जी
आगे आइए, आप भी आइए।
जी जी।
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। सलाम हाजी साहब।
अलैकुम सलाम। अलैकुम सलाम। यहाँ नहीं है,
शायद बस में ही हूँ हाजी साहब।
सलाम अब्बू जान।
सलाम मेरी प्यारी गुड़िया। सलाम अलैकुम।
अलैकुम सलाम।
आपकी बहुत याद आ रही थी अब्बू जान।
मैं सदके जाऊं मेरी बेटी, मुझे भी तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी बेटी, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूं मेरी प्यारी बेटी। मेरी प्यारी बेटी अपनी अम्मी से प्यार करती है ना?
जी।
रहीम साहब, मैं वापस नहीं जाऊंगी।
मैं भी यहाँ आप लोगों को वापस ले जाने नहीं आया हूँ, बल्कि इसी बस के जरिए मिलकर कुंभ चलते हैं, अगर जगह ना भी हुई।
क्या आप तबलीग के लिए नहीं आए हैं?
हाँ लेकिन, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन लेकिन तुम्हारी खातिर वापस जाना चाहता हूँ।
आप अपना काम जारी रखें, मेरी खातिर अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है।
इस वक्त मेरी जिंदगी की तरजीहात तुम दोनों का ख्याल रखना है। अलबत्ता ये मैंने तुम्हारी याददाश्त की डायरी में ही पढ़ा।
मेरी याददाश्त?
मैंने सिर्फ ससरी निगाह से देखा था और उसकी कीमत भी चुका दी।
कैसी कीमत?
जो करबला से तुम कमीज लाई थी उसे प्रेस से जला दिया।
उसको जला दिया?
मैं क्या करूं, ये तो तुम्हारी गलती थी जो तुमने इतनी अच्छी डायरी लिखी थी।
रहीम साहब, हमारे लिए अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है।
जाइए अम्मी के पास जाइए। या अल्लाह, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। मजी से कह दूंगा कि मेरा सामान कुंभ भिजवा दें।
आपने वादा किया है कि मोहर्रम का पहला अशरा पढ़ेंगे, वापस नहीं जा सकते।
खुदा का शुक्र है कि शहर में ऐसे आलिम मौजूद हैं जो मेरी कमी पूरी कर सकते हैं। तुम ऐसे क्यों देख रही हो सुमैया साहिबा? लोग मुझे जानते हैं, तुम इस तरह देखोगी तो लोग समझ जाएंगे कि मैं जन मुरीद हूँ।
रहीम साहब, यूं ही छोड़कर आप नहीं जा सकते हैं। खुद ही तो आप मिंबर पर हमेशा वादा पूरा करने पर जोर देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना?
ला दीना लेमन ला एहताला। ठीक है, लेकिन एक और जगह पैगंबर फरमाते हैं, मर्द घराने का सरपरस्त होता है और घर वालों के सिलसिले में उसकी जिम्मेदारी है। अमीरुल मोमिनीन भी तो फरमाते हैं कि औरत फूल होती है।
ठीक है, तो फिर हम सब मिलकर वापस चलते हैं। आप यही चाहते हैं ना कि बीवी बच्चे राजी रहें? हम मिलकर लौटते हैं, इस तरह से वफाए अहद भी हो जाएगा और आशूरा के बाद तीनों वापस चले जाएंगे।
ठीक है, ठीक है, बेहतर है।
हाजी साहब आप जाइए, मैं सूटकेस ले आता हूँ।
बहुत शुक्रिया मजीद साहब, तुमने बहुत ज़हमत की।
मैंने तो कुछ नहीं किया हाजी साहब।
सुमैया बेगम, ये सच है कि इस मुद्दत में मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। असल में जब मैं तबलीग के लिए जाता हूँ तो चाहता हूँ कि सारी तवज्जो उसी तरफ रहे। अगर इस मुद्दत में तुम्हारे हक में कोई कोताही हुई हो तो मुझे माफ कर दें।
कोई बात नहीं, आप भी अपनी इस्लाह की कोशिशों को जारी रखें।
सर आंखों पर।
माफ कीजिएगा।
जी बिस्मिल्लाह।
शरीफ ले जाइए।
बिस्मिल्लाह कीजिए।
जाइए।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
استغفر الله ربي واتوب اليه
شجاعت کو اخلاق کی روایتوں میں ایک فضیلت کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے، لیکن شجاعت کا دوسرا رخ خوف ہے، جو ایک نہایت اہم موضوع ہے جس کو نہ صرف دینی متون میں توجہ دی گئی ہے بلکہ ہماری زندگی میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم اپنے وجود کے بعض خوفوں کو نہیں دیکھتے کیونکہ ہمیں ان کی عادت ہو گئی ہے، ہم اپنے بعض خوفوں کو برا نہیں سمجھتے۔
سنو جی،
کیونکہ وہ ہماری روح میں رچ بس گیا ہے۔ یہ وہ خوف ہے جو آہستہ آہستہ ہماری روح کو سیاہ کر دیتا ہے اور معنویت کو ختم کر دیتا ہے، قساوت قلب کا سبب بنتا ہے۔ ایک بات جو قساوت قلب کا سبب بنتی ہے، یہی ہماری زندگی میں چھوٹے چھوٹے خوف ہیں، اور مذاق اڑائے جانے کا خوف۔ خوف سے ڈرنا بہت سی بے دینیوں اور غلط کاموں کا سبب ہے۔ آپ لوگ اس بات کا خیال رکھیں کہ مذاق اڑائے جانے کی وجہ سے اپنے دین کو نہ چھوڑیں۔ صلوات بھیجیے۔ حتیٰ امام حسین علیہ السلام جناب مسلم کے استفاء نامے کے جواب میں فرماتے ہیں، ڈرتا ہوں کہ تم ڈر گئے ہوگے۔ دیکھیے، یہ خوف اتنا مذموم اور ناپسندیدہ ہے کہ امام بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ دینی تعلیمات کے مطابق خوف دو طرح کا ہے، ایک مذموم اور ناپسند اور دوسرا پسندیدہ۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے گناہ کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈریں، اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن ہمیشہ دو خوفوں کے درمیان رہتا ہے، اس گناہ کا خوف جو ماضی میں اس سے سرزد ہوئے ہیں اور نہیں جانتا کہ خدا نے معاف کر دیا ہے کہ نہیں، اور اس گناہ سے خوف جو نہیں جانتا کہ آئندہ اس سے سرزد ہونے والے ہیں۔ تو مومن ہمیشہ خوف کی حالت میں رہتا ہے، اور خوف ہی اس کی اصلاح کر سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قبول کرے، خدا قبول کرے، خدا قبول کرے۔ قبول ہو حاجی صاحب؟
میں قبول حق ہوں۔
آپ یقین کریں بہت عرصہ ہوا ایسی تقریر سنے ہوئے۔ میں سعید خواجہ سفر ہوں، ایک زحمت دینی تھی آپ کو، آپ جہاں کہیں بھی تقریر کیجیے گا مجھے بتا دیجیے گا، میں پوری ٹیم کے ساتھ آ جاؤں گا۔ مرزائی صاحب اس کو کہتے ہیں تقریر۔
حافظی صاحب سے یہی بات ہو رہی ہے۔
خوشستفر صاحب
جی،
मैं अभी रास्ते के इब्तिदा में हूँ, मेरी ये पहली तकरीर थी।
आप कसर नफ्स कर रहे हैं।
आपको मुझसे कोई काम तो नहीं?
नहीं, शुक्रिया।
खुदा हाफिज़।
खुदा
जी इजाजत दे।
खुदा आपका मुहाफिज हो जनाब। बहुत अच्छी तकरीर थी।
बहुत अच्छी तकरीर,
बहुत ही अच्छी थी।
पहली तकरीर थी लेकिन बहुत ही अच्छी थी।
आपने ध्यान दिया कि नहीं, मैं पहले रिकॉर्ड नहीं करना चाहता था लेकिन जब मैंने तकरीर सुनी तो वाकई में बहुत अच्छी थी।
मुस्तकबिल बहुत रोशन है।
ज़हमत किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया।
कोई बात नहीं,
बहुत बहुत शुक्रिया मजीद। लाओ मुझे दे दो।
नहीं हाजी साहब, हमारा फर्ज है, आपने यहाँ रहने का फैसला किया है, इस पर मैं बहुत खुश हूँ।
तो तेहरान कब जा रहे हो?
मैं आज रात ही जाना चाहता था लेकिन देर हो गई, कल सवेरे निकल जाऊंगा।
मजीद भाई, अगर जा रहे हो तो गाड़ी ज्यादा तेज मत चलाना।
नहीं हाजी साहब, गाड़ी से नहीं जा रहा हूँ, गाड़ी वापस देना चाहता हूँ।
क्यों?
जो वाकयात पेश आए हैं उनके पेश नजर वापस करना बेहतर होगा।
शाबाश मजीद भाई, बहुत अच्छा फैसला किया है।
अगर खुदा ने पैसा दिया तो उससे ज्यादा बेहतर गाड़ी खरीद लूंगा
इंशाल्लाह।
जी,
हमें भी सवार करोगे?
आप साहिब इख्तियार हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया
आपका। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत जहमत उठाई। खुदा ने के बांध कामयाब कामरान रहो।